Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe Jaya Gaur Nataraj Jaya Dayalita Gaur Nataraj Jaya Dayalita Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबी डी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग शिल प्रभुपाद की जय
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Aap sabka swagat hai is Govind Charan Shankhala mein jab Bhagwan ke Charan Chinhon ki charcha hum log kar rahe hain aur ab tak Bhagwan ke बाएं चरण में जो चिन्ह हैं उनमें से छह चिन्हों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं शंख की चर्चा हुई अंबर की चर्चा हुई धनुष की चर्चा हम लोग कर चुके हैं साथ ही साथ कल हम लोगों ने चर्चा की त्रिकोण की कुंभ की और किसकी हाँ गोष्पद सो गोष्पद की चर्चा हम लोगों ने की तो ऐसे ये छह चिन्हों की चर्चा हो चुकी है और अब आगे चिन्हों की चर्चा आज करेंगे तो अब दो चिन्ह बचे हैं भगवान के बाएं चरण की जिनका वर्णन करना है फिर हम दाहिने चरण की ओर बढ़ेंगे तो जो दो चिन्ह बचे हैं उनमें से एक है अर्धचंद्र और दूसरा है मीन या मछली तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे अर्धचंद्र ये भगवान के चरण कमलों में एक चिन्ह है ऐसे चांद बना हुआ आधा पूरा नहीं है तो ये अर्धचंद्र जो भगवान के चरण चिन्हों में है इसे शिवजी अपने मस्तक पर धारण करते हैं आपने अगर शिवजी का चित्र देखा है तो शिवजी की जटाओं में अर्धचंद्र है वैसे तो बहुत से लोग कई अलग अलग वर्णन करते हैं कि कैसे शिवजी के मस्तक पर ये चरण आया जैसे एक वर्णन किया जाता है जो बड़ा प्रसिद्ध है कि दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया चंद्र ने सोम ने और एक उनमें से एक थी रोहिणी उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव था और कई बार दक्ष ने समझाया लेकिन उन्होंने सुना नहीं तो फिर जब बाकी सारी रानियां बाकी सारी जो उनकी पुत्रियां थी उन्होंने फिर शिकायत की तो उन्होंने उनको दंड दिया कि आप धीरे धीरे गायब हो जाओगे। और फिर उससे बचने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी की शरण लो, तो शिव जी ने मस्तक में धारण कर लिया ताकि वो गायब ना हो, अर्थात रक्षा की। और इसीलिए शिव जी का एक नाम है सोमनाथ, सोम अर्थात चंद्रमा, और उनके जो रक्षक करने वाले जो उनके जो स्वामी हैं तो उनको सोमनाथ कहते हैं। तो इस प्रकार शिव जी का ये एक वर्णन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वर्णन ठीक नहीं है, दरअसल अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें, तारों की स्थिति को देखें, नक्षत्रों की स्थिति को देखें, तो उसके अनुसार ये जो चंद्रमा है उसमें 27 अलग अलग प्रकार के नक्षत्र होते हैं इत्यादि, उनका वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि उसके अनुसार ये चंद्रमा आधा, तो इसलिए शिव जी धारण करते हैं। और हमारा मानना है कि न पहला वर्णन सही हो सकता है और न दूसरा वर्णन। क्यों? क्योंकि एक ही वर्णन सही हो सकता है और वो ये है कि शिवजी अर्धचंद्र अपने मस्तक पर इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वो चिन्ह श्री कृष्ण के चरणों में है। इसीलिए जब मस्तक पर धारण करने की बात आई चंद्रमा को तो उन्होंने कहा अर्धचंद्र करेंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के चरण में अर्धचंद्र है। तो अब श्री कृष्ण के चरणों में आधा ही चंद्रमा क्यों नहीं है? कृष्ण तो कभी कभी कृष्ण का नाम कृष्ण चंद्र कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है, गौरचंद्र कहा जाता है, तो ये तो चंद्रमा पूरा होना चाहिए, भगवान के चरणों में आधा क्यों है? आचार्यों ने समझाया कि भगवान के जो चरण हैं उनकी जो नख हैं, भगवान के 10 नख, ये चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाशमान हैं, सुंदर हैं। तो जब चंद्रमा भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने आया तो चंद्रमा ने देखा कि 10 इतने बड़े प्रकाशमान चंद्रमा हैं, तो वो थोड़ा शर्मा गया कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए आधा ही चंद्रमा भगवान के चरणों में रहा। तो इसीलिए शिव जी धारण कर रहे हैं उस आधे चंद्रमा को। और जो भक्त भगवान के इस चरण चिन्ह का स्मरण करते हुए भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वे लोग शिवजी की तरह भगवान के महान भक्त बन सकते हैं अगर वे चंद्रमा का स्मरण करें। चंद्रमा ये साधारणता जुड़ा हुआ है शीतलता से, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, और इसीलिए जब हम जप करें तो हमें भगवान के चरणों में अर्ध चंद्रमा का स्मरण करना चाहिए और ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है अपनी किरणों से, हे कृष्ण आप इतनी कृपा करें कि आपके चरणों का अमृत मेरे कानों में, मेरे जिह्वा पर और मेरे हृदय में प्रवेश कर सके इस जप के समय, तो वो अमृत का स्वादन हम कर सकें जो अमृत भगवान के चरणों में है। और उसके द्वारा ये जो अग्नि लगी हुई है वो शीतल हो जाए, जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा मन का भी अधिष्ठाता देव है। हमारे जितने शरीर में अंग हैं हर एक स्थान के कोई ना कोई अधिष्ठाता देव हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं, और चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देव है, मन को नियंत्रित करता है। तो जब हम जब करें भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण करें, उस अर्ध चंद्रमा का स्मरण करें, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान ये जो चंद्रमा है इस जगत का, ये मन का अधिष्ठाता है, और आज आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज मैं इस भौतिक जगत के चंद्रमा को अधीनता को त्याग कर अपने मन को आपके चरणों में जो चंद्रमा है उसको स्वीकार करना चाहता हूँ, अर्थात आपके चरण चिन्हों में जो अर्ध चंद्र का चिन्ह है वो चंद्रमा मेरे मन का स्वामी बने, मेरे मन का नियंत्रण करे, ताकि मैं आपके चरण कमलों का स्मरण सतत कर सकूं। तो ऐसी याचना हमें भगवान से करनी चाहिए जब हम जप कर रहे हैं, क्योंकि जप करने में सबसे बड़ी कठिनाई मन की है। हम एक जगह सीधे बैठ भी सकते हैं और जप भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन मन हमें करने नहीं देता, बारंबार कोई ना कोई बात बीच में ले आता है। तो इसीलिए उस मन को इस चंद्रमा से निकालकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों के चंद्रमा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा के कई गुण हैं। चंद्रमा एक ही है लेकिन कई लोगों को दिखाई देता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। इसी तरह भगवान के चरण चिन्ह है या भगवान स्वयं है तो एक ही भगवान, लेकिन जैसे चंद्रमा हजारों लाखों लोगों को एक साथ शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही भगवान के चरण चिन्ह लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ उद्धार कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है वे लोग लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार कर सकते हैं, और इसका प्रमाण है भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया और उसके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार किया। तो ये चंद्रमा है, हम जब चंद्रमा का स्मरण करें तो हम ये सोच सकते हैं कि आपके चरणों में ये शक्ति है, जैसे चंद्रमा में शक्ति है वो एक ही समय लाखों लोगों को दिख सकता है, आप भी एक ही समय एक ही स्थान पर रहते हुए लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार कर सकते हैं, कृपया उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक एक नाम मेरा भी हो जाए, मेरा भी उद्धार आप करें। तो ये भी हम प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। चंद्रमा अर्ध चंद्रमा होता है, चंद्रमा कभी बढ़ता है और कभी कम होता है, दो पक्ष होते हैं हम लोग जानते हैं, एक पूर्णिमा होती है और एक अमावस्या। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक वो बढ़ता है, फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक कम होता है। तो इसी तरह हमारी भक्ति है, कभी बहुत बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो भगवान से हम जब भगवान के चरणों का स्मरण करें और उस चिन्ह का स्मरण करें तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे 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 चंद्रमा बढ़ता है पूर्णिमा की ओर, अर्थात प्रकाश बढ़ता जाता है, तो हे कृष्ण जैसे जैसे मैं आपके नाम को लेता जाऊं, जैसे जैसे मैं आपकी कथा का श्रवण करते जाऊं, कृपया इतनी कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मेरे हृदय से ये जो अंधकार है, अज्ञान है, अज्ञान की तुलना अंधकार से की गई है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अंधकार है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो अंधकार जो मेरे हृदय में अज्ञान का अंधकार है, जैसे चंद्रमा बढ़ता है जैसे जैसे मैं आपका जप करता जाऊं, प्रार्थना ये है कि मेरे हृदय से वो अहंकार कम होता जाए, वो अंधकार कम होता जाए, और फिर उस अंधकार को कम हो गया और जैसे जैसे वो जो चंद्रमा है वो कम होता जाता है पूर्णिमा से अमावस्या तक, और फिर वो एक नए चंद्रमा को प्रकट करता है जिसको न्यू मून कहते हैं, न्यू मून डे। तो ऐसे ही मेरे हृदय में भी ये जितने भी भावनाएं हैं अंधकार हैं ये धीरे 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 समाप्त हो जाए और मैं बड़े शुद्ध हृदय से आपका नाम ले सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हम चंद्रमा से सीख सकते हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात भक्तों को चंद्रमा से सीखनी चाहिए। कभी कभी हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे मन में आता है कि कब होगा, कब मेरी आंखों में आंसू आएंगे, कब मेरे हृदय में वो प्रेम जागृत होगा, कब मैं भगवान को प्रत्यक्ष देख सकूंगा। तो जब ऐसे विचार आए तो हमें चंद्रमा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का उदय होना, पूर्णिमा होना, अमावस्या होना, चंद्रमा का अस्त होना, ये सब भगवान ने निश्चित करके रखा है। आज ही नहीं, आज से हजार साल बाद चंद्रमा किस समय उदय होगा, किस कितने बजकर कितने मिनट पर, यह बताया जा सकता है। भगवान ने निश्चित करके रख दिया है पहले से। और इसी तरह हमें सोचना चाहिए कि जिस दिन हमने पहली बार जपमाला उठाई, जिस दिन पहली बार कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण ने डेट निश्चित कर दी हमारी, कृष्ण ने निश्चित कर दी है हमारी डेट धाम में आने की। जिस दिन हमने माला उठाई उसी दिन, अब बस उस डेट को वो कृष्ण जानते हैं, निश्चित की हुई है। जैसे पूर्णिमा समय पर आती है, कभी बदलती नहीं है, जो चंद्रमा का उदय होना है अगर 6:38 है तो वो 38 पर ही होता है। इसी तरह जब भगवान ने लिख दिया है कि हमारी भी डेट, जिस दिन हमने माला उठाई भगवान ने डेट लिख दी, हम धाम में निश्चित जाएंगे, हमारा उद्धार निश्चित होगा। भक्त को चिंता ही नहीं करनी चाहिए अपने उद्धार की। और इससे क्या चिंता करनी चाहिए भक्त को, अगर अपने उद्धार की चिंता ना करे, अन्यों के उद्धार की चिंता करे। जितना जितना अन्यों के उद्धार की चिंता करते जाते हैं, भगवान जैसे कि चंद्रमा धीरे 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 कम होता जाता है, भगवान हमारी डेट को कम करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा तुमने प्रचार कर लिया इतने लोगों को, और कम हो गया, जल्दी आओगे मेरे पास, और जल्दी हो गया। अर्थात हमें अपनी साधना तो करनी ही है, लेकिन हमें अब भक्त के रूप में जो हमें मिला है, जो प्रेम हमें मिला है, जो ज्ञान हमें मिला है, जो भक्ति हमें मिली है, जो परंपरा हमें मिली है, जो गुरु का प्रेम हमें मिला है, जो आचार्यों की वाणी हमें मिली है, उसको अन्यों को बांटना है। अपने पास रखना तो स्वार्थ हो जाएगा, और कोई गुरु कोई आचार्य चाहते नहीं कि हम स्वार्थी बने, इसीलिए बांटिए और उससे कृष्ण को प्रसन्न कीजिए। तो ये भक्तों का कार्य होना चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात चंद्रमा हमें सिखलाते हैं। चंद्रमा के अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में वो प्रकट होता है, अलग समय होता है। एक समय चंद्रमा पूरा होता है, फिर कम होता है, फिर कम, उसके अलग अलग फेसेस हैं और फिक्स, फिर उसके बाद फिर से। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर अमावस्या है तो अमावस्या ही रहेगी, नहीं, चली जाती है, ये निश्चित है। अमावस्या आज है, 15 बाद पूर्णिमा होगी और फिर अमावस्या होगी। अर्थात चंद्रमा हमें बहुत अच्छी चीजें सिखलाता है। जब हम भगवान के चरण कमलों को स्मरण करें और उसमें उस अर्ध चंद्र का स्मरण करें, तो इस बात का स्मरण करें कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, हर समय अमावस्या नहीं रहती। और इसी तरह हम भी ये प्रार्थना करें और ये विश्वास रखें मन में कि आज हमारा मन अनर्थों से भरा हुआ है, आज हमारे मन में कृष्ण प्रेम नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करें, ये समय भी चला जाएगा। जब बहुत दुखी हो आप और कृष्ण का जप करने की भी इच्छा ना हो रही हो, इतने दुखी हो लेकिन फिर भी एक कर्तव्य बुद्धि से कृष्ण का नाम का जप कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि ये समय भी चला जाएगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। इस जगत में कुछ शाश्वत नहीं है, तो ये भी हम लोग इस चंद्रमा से सीख सकते हैं। चंद्रमा से एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग सीख सकते हैं। आकाश में कई तारे होते हैं, लेकिन चंद्रमा उन सब में खिलकर आता है। जितना प्रकाश, जितना गुणगान चंद्रमा का किया जाता है, उतना गुणगान तारों का नहीं होता। प्रकाश तारों में भी है, लेकिन एक चंद्रमा बहुत है कई तारों में। तो भक्तों को ये सोचना चाहिए, अपने अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए चंद्रमा का स्मरण करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जैसे कई सारे सितारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें चंद्रमा को प्रमुख माना जाता है। चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, सबसे ज्यादा वो रोशनी देता है।
जय श्री शिव नटराज।
इसी तरह हमें मानना चाहिए कि बाकी सारे अध्यात्मवादियों में, फिर वो चाहे कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ रहे हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ रहे हैं, योग के द्वारा भगवान से जुड़ रहे हैं, ब्रह्मवादी हैं या जो भी हैं, सारे अध्यात्मवादियों में से जो भक्त है वो चंद्रमा के समान है। और जब हमने भक्ति स्वीकार कर ली तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा पथ, ये भक्ति का पथ, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे विश्वास के साथ हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और अंततः चंद्रमा से बहुत महत्वपूर्ण बात हम सीख सकते हैं, और वो ये कि चंद्रमा में दाग होता है। आपने देखा होगा चंद्रमा में, जब देखते हैं तो उसको ध्यान से देखिए, उसमें दाग दिखाई देता है। तो चंद्रमा में दाग होता है, लेकिन फिर भी दाग होते हुए भी अन्य सभी तारों से जिनमें दाग नहीं दिखता, चंद्रमा श्रेष्ठ कहलाता है। तो क्यों श्रेष्ठ कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर प्रकाश है, इतना वो इतना प्रकाशमान है, शीतलता प्रदान करता है। इसी तरह हमें जप करते हुए ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, पाप से भरा हुआ हूं, लेकिन जो श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, जिनमें वो चंद्र है, वो ये दिखलाने के लिए है कि अगर दाग है भी, पाप है भी, तो विश्वास रखिए कृष्ण के चरण कमलों में, कृष्ण पतित पावन है। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद कहते हैं हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि जो 64 माला जप नहीं करता वो पतित है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं इस आधार पर हम सब पतित हैं, 16 माला जप कर रहे हैं केवल, प्रभुपाद कहते हैं इस आधार पर हम सब पतित हैं, लेकिन प्रभुपाद आगे लिखते हैं हमारा विश्वास है चैतन्य महाप्रभु पर कि हम सब पतित हैं, लेकिन वो पतित पावन हैं और वो हमारा उद्धार करेंगे। तो इसी तरह हमें विश्वास होना चाहिए, भले चंद्र में दोष है, हे कृष्ण अपने मन का चंद्र, अपने आप को मैं आपके समक्ष ला रहा हूं, भले इसमें दोष है, लेकिन विश्वास है कि आप पतित पावन हैं, आप उद्धार करेंगे। तो ऐसा स्मरण हमें चंद्रमा को, अर्ध चंद्रमा को देखते हुए करना चाहिए। तो ये एक चिन्ह है। और आखिरी चिन्ह जो भगवान के बाएं चरण में है वो है मछली, मत्स्य, मीन उसका चिन्ह है। तो मछली का चिन्ह क्या सूचक है? आज प्रयास करेंगे और एक दो चिन्हों को कह देने का, ताकि 19 चिन्ह पूरे हो जाएं। 8 तो हम लोग कर ही लेंगे और 11 जो अब दाहिने चरण के हैं वो भी इस पूरे सेमिनार के खत्म होते होते। तो मछली, ये क्या इसका लक्षण है? तो जैसे ही मछली का स्मरण आता है तो क्या स्मरण आता है? अगर मछली के गुण देखने जाए तो पहला गुण, पहला लक्षण मछली का यही स्मरण आता है कि जल के बिना रह नहीं सकती। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, राइट? बचपन से सुनते आए। तो मछली का अर्थ है, जैसे ही सुने, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। तो जब हम जप करें, भगवान के चरण चिन्हों में उस मछली को देखें, तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, क्या मैं ऐसी मछली नहीं बन सकता जो आपके चरणों के अलावा, आपकी भक्ति के बिना, आपके बिना, आपके भक्तों के बिना रह ना पाऊं? कृपया ये भाव मेरे अंदर दीजिए। आज मैं, अगर मेरे प्रियजन चले जाते हैं तो मैं बहुत रोता हूं कि हाय हाय मेरे प्रियजन चले गए, लेकिन अगर कोई एक भक्त इस पृथ्वी से जाता है तो मुझे कोई दुख नहीं होता, मुझे कोई प्रेम नहीं है। तो मेरा प्रेम भक्तों से हो, मेरा प्रेम आपसे हो भगवान, रह नहीं पाऊं आपके बिना। और वैसे भी जीव की ये मूल स्थिति है, श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि मछली को बाहर निकाल लो तो कभी सुखी नहीं होगी, इसी तरह जीव को भगवान से दूर रखो, कभी सुखी नहीं होंगे। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपके नाम लिए बिना जी नहीं पाऊं। जिस दिन आपका नाम नहीं लूं उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा हो ही ना कि मैं आपका नाम लिए बिना जी रहा हूं। प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मेरे प्राण निकल जाएं अगर आपको एक क्षण भी भूल जाऊं मैं। ऐसी अवस्था में रखिए मुझे। आज तो अवस्था बिल्कुल उल्टी है, कृष्ण का स्मरण कभी कभी होता है, लेकिन हे कृष्ण, आप उस स्थिति में लाइए मुझे जहां आपके बिना मैं रह ना पाऊं, आपके चरणों को स्मरण किए बिना ना रह पाऊं, आपके नाम के उच्चारण के बिना ना रह पाऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा, हे कृष्ण, मैं अपने मन को तैयार कर लूं। एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मैं वो मछली बन जाऊं जो कभी पानी के बिना, आपके चरणों के बिना रह ना सके, आपके चरण में जो दिव्य जल है उसके बिना रह ना सके। लेकिन और एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री कृष्ण, मैं अपने हृदय को एक अमृत का सागर बनाना चाहता हूं, एक ऐसा सागर जिसमें आप अपने चरण कमल बड़ी आसानी से रख सकें। तो ये जो मछली है आपके चरण कमलों में, उसके लिए मैं एक सागर तैयार करना चाहता हूँ, एक अमृत का सागर। और वो अमृत के सागर तैयार होता है जब अमृत की वर्षा होती है, और अमृत की वर्षा होगी जब हम सतत भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और न केवल आपके नाम का उच्चारण, मछली एक और स्थान पर मछली का लक्षण बताया जाता है शास्त्रों में। जब चार प्रकार के अच्छे श्रोता का वर्णन किया जाता है कि चार प्रकार के ऐसे श्रोता हैं जो बड़ा अच्छा सुनते हैं, तो उनमें एक आता है मीन, मछली। चार प्रकार के श्रोता कौन हैं अच्छे सुनने वाले, तो वर्णन किया गया है कि पहला है चातक पक्षी, चातको हंसो शुक मीन, ये चार हैं। एक है चातक, दूसरा है हंस, तीसरा है शुक, और चौथे हैं मीन, अर्थात मछली। तो मछली कैसे श्रवण करती है? चातक का श्रवण कैसा है? चातक के अंदर, चातक का लक्षण होता है कि वो केवल वर्षा के जल को ग्रहण करता है, वो भी स्वाति नक्षत्र में, और प्यासा मर जाएगा लेकिन जल नहीं लेगा। अच्छे श्रोता कौन होते हैं? जो केवल कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, वे और कोई कथा में रुचि नहीं लेते। दूसरे होते हैं चातको हंसो, हंस जो अगर इधर उधर से थोड़ा कभी सुनाई भी दे जाए तो भी हंस की तरह भेद करना जानते हैं। जैसे हंस पानी और दूध को अलग कर देता है, ऐसे ही ये श्रोता होते हैं जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं, कभी सुन भी लेते हैं तो उसको अलग कर देते हैं। और तीसरे अच्छे प्रकार के श्रोता बताए गए हैं शुक, शुक अर्थात तोता। तो वो कैसे श्रोता हैं? जो सुनते हैं वो उसी तरह दूसरों को बता सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं आचार्यों के वचनों को, गुरु के वचनों को, जैसा कहा वैसा बता सकते हैं। और चौथे प्रकार के श्रोता कहे गए हैं मीन अर्थात मछली। वैसे चार प्रकार के अच्छे श्रोता हैं और चार प्रकार के बुरे श्रोता भी कहे गए हैं शास्त्रों में, लेकिन आज उनका वर्णन नहीं करेंगे। तो मीन ये अच्छे श्रोताओं में आती है। तो उसका क्यों क्यों अच्छे श्रोता में आती है? क्योंकि जैसे चातक का लक्षण बताया और शुक का लक्षण और हमने हंस का बताया, मीन का क्या लक्षण है? मीन का लक्षण है जब वो तैरती है पानी में तो केवल एक तरफ देखकर चलती है, ध्यान एकदम उसका सामने रहता है। तो चौथे प्रकार के जो श्रोता हैं कि बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं, आंखें बंद नहीं होती उनकी, नींद नहीं आती उनको, बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए उस मीन का स्मरण करके कि ऐसी रुचि मेरी आपकी कथाओं में बढ़ जाए तो हे भगवान मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए कि जहां जैसे मछली होती है वो जब जल में तैरती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कीचड़ मिल जाए उसको, जहां जल भी होता है लेकिन मिट्टी से भरा हुआ, तो फिर मछली तड़पने लगती है। तो एक भक्त को ऐसे होना चाहिए मछली की तरह कि अगर कृष्ण कथा का सागर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं उसमें मिट्टी मिल गई है, कहीं उसमें अन्य कोई मिलावट आ गई है, शुद्ध परंपरा से नहीं है ज्ञान, तो फिर भक्त को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हमें मछली ज्ञान देती है। और मछली एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है मछली ने, भगवान के चरणों में तो है ही, लेकिन उसने एक स्थान ग्रहण किया है और वो है एक ध्वज, एक फ्लैग है। तो ध्वज पर है, तो कौन से ध्वज पर है? कामदेव के ध्वज पर। जो कामदेव हैं हमारे इस जगत में, जो काम वासनाओं को बढ़ाते हैं, उनके ध्वज पर है ये मछली, उनका चिन्ह है मछली कामदेव का। और इसीलिए भगवान के चरण चिन्हों में ये मछली क्या सूचित करती है कि अगर हम इसका स्मरण करते हैं तो जो हृदय से जितनी काम वासनाएं हैं वो निकल जाएंगी, क्योंकि कामदेव का वो चिन्ह है। और वो चिन्ह जब कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेता है तब फिर कामदेव की कोई चाल नहीं चलती, क्योंकि कृष्ण आदि स्मर हैं, आदि कामदेव हैं कृष्ण। तो इसीलिए ये दो प्रकार के काम होते हैं, एक आदि काम जिसे आदि रस कहा जाता है, और दूसरा इस जगत का काम जो विकृत रूप ले लेता है, वासना का। तो ये वासना के जो अधिष्ठाता हैं वो इस जगत के कामदेव हैं, और जो आदि रस शुद्ध प्रेम के अधिष्ठाता हैं वो श्री कृष्ण हैं, आदि स्मर कहा जाता है उन्हें। तो मछली का स्मरण करके जप करते समय हम भगवान से, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए कहें कि हे भगवान, वासनाओं से भरा हुआ है हृदय, काम से भरा हुआ है हृदय, बहुत प्रयास कर लिया नहीं जा रहा है, अब बस एक ही आशा है कि जिस प्रकार ये मछली इसने आश्रय लिया है आपके चरण चरणों में, तो जैसे उसने कामदेव को त्याग कर आपके चरणों में स्थान ले लिया, ऐसे ही बस मेरा भी मन इस भौतिक काम वासनाओं को त्याग कर आपके चरणों में शुद्ध प्रेम को प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और साथ ही साथ मछली के जीवन से बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग सीखते हैं। जब मछली जल में ऊपर तैर रही होती है तो मछली क्या करती है, मछली आश्रय लेती है जल का, चाहे ऊपर तैरे नीचे तैरे, और उसको कोई कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। हम लोग जब पानी में तैरते तो हमें तकलीफ होती है, मछली को कोई तकलीफ नहीं होती। हमने एक बार खुद देखा था कि हमने एक स्थान पर बहुत बड़ा पाइप लगाया था जिससे बड़ी तेज पानी जा रहा था, और हमने देखा कि उसमें छोटी छोटी इतनी इतनी मछलियाँ थी, बहुत सारी आई थी, तो वो खेल कर रही थी, जबकि इतना तेज प्रवाह जा रहा था वहां से। लेकिन वो लोग आते थे, छोटी छोटी 30-35 मछलियां थी, छोटी छोटी सब, तो वो आती थी जानबूझ करके, उनको स्पीड में जा रहा था तो खेल हो रहा था उनके लिए, वो आती थी फिर ऐसे चली जाती थी, फिर आती थी फिर चली जाती थी, मतलब वो खेल कर रही थी। और हम सोच रहे थे कि देखो ये तो बहुत छोटी सी मछली है, इतनी इतनी छोटी मछली, लेकिन ये भी जल में आनंद ले रही इतने तेज बहाव में, इसको कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने आश्रय ले लिया। इसी तरह अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लें तो इस जगत के सारे भय से मुक्त हो जाए। अभय चरणारविंद रे। और फिर जब मछलियां पानी में केवल ऊपर ऊपर तैरती हैं तो जानते हैं क्या होता है, गरुड़ जी आते हैं, जो गिद्ध होते हैं, जो गरुड़ होते हैं, वो जो पकड़ना चाहते हैं मछली को, तो कौन सी मछली को पकड़ते हैं, जो जल में ऊपर है, ज्यादा अंदर तो नहीं जा सकते। तो जब तक मछली ऊपर रहती है तो ये जो गिद्ध है या जो भी है जो खाते हैं वो आकर पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन जब वही मछली पानी में बड़े गहराई में होती है तब कोई उसको पकड़ नहीं पाता। इसी तरह जब तक हम भक्ति में ऊपरी तौर पर केवल दिखावे की भक्ति करते रहते हैं, भक्ति की गहराइयों में प्रवेश नहीं करते, तब तक काल रूपी गिद्ध हमें पकड़ने के लिए तैयार है, तब तक काम रूपी गिद्ध हमें पकड़ने के लिए तैयार है, भोग रूपी गिद्ध हमें पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जब भक्त भक्ति की गहराइयों में जाता है, अर्थात अपने आप को डुबो देता है कृष्ण कथा में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण की सेवा में, वैष्णव सेवा में, तो उस समय वो बच जाता है उस गिद्ध से, काल रूपी गिद्ध से। और इसीलिए गहराइयों में जाना, प्रभुपाद समझाया करते थे कि नाउ इज द टाइम टू बॉइल द मिल्क, अब समय है कि हमें दूध को गाढ़ा करना है। अर्थात आंदोलन की स्थापना, ये प्रभुपाद का उद्देश्य था, उन्होंने उद्देश्य पूरा किया, आंदोलन को स्थापित किया, अब हमें केवल उसको आगे बढ़ाना है। प्रभुपाद ने हमें भक्ति का मार्ग दिया, हमें गंभीरता लानी है। प्रभुपाद ने हमें पथ दिखाया, हमें चलना है। तो इसीलिए नाउ इज द टाइम टू बॉइल द मिल्क, गहराई में जाने की आवश्यकता है अब भक्ति के, भक्ति के सिद्धांतों को, गहन सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। नम्र भाव में वैष्णव सेवा करने की आवश्यकता है, समर्पित भाव में कृष्ण कथा श्रवण करने की आवश्यकता है, और ध्यान पूर्वक भगवान के नाम लेने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आवश्यकता। और ये हम मछली से सीखते हैं। हमने कुछ समय पहले सुना था कि एक स्थान पर जब सुनामी आया तो जिस सुनामी आने से पहले लोग वहां पर सब कुछ खेल कर रहे थे, तो उनमें से एक व्यक्ति वो समुद्र में गहराई में चला गया, डाइव किया उसने अंदर, और वो बहुत समय अंदर रहा। और वो बताता है उसका अनुभव आया था लिखकर कि जब वो अंदर था तो तो उसको कुछ ऐसा जरा सा हलचल सुनाई, ऊपर पता चला कि कुछ हलचल हुआ है, बस उतना है। उसने सोचा होगा कुछ, वो अपना नीचे जो गया था ढूंढ रहा था, जो कर रहा था, डाइविंग किया हुआ था, वो सब करा। और जब वो बाहर आया तब तक सुनामी समाप्त तो हो चुका था, सुनामी आकर सब बर्बाद कर चुका था। और जब ये बाहर आया तो इसने देखा हर आश्चर्य, ये क्या हो गया। और तब उसको बहुत बाद में पता चला कि जिस समय वो नीचे था उस समय ऊपर सुनामी आ गया, लेकिन क्योंकि वो नीचे था समुद्र में, इवन सुनामी भी उसका कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह हमारे जीवन में रोज सुनामी आते हैं, भावनाओं के सुनामी आते हैं, वासनाओं के सुनामी आते हैं, आसक्तियों के सुनामी आते हैं, बहुत सारे सुनामी आते हैं। लेकिन इन सब से हम बच सकते हैं अगर भक्ति की गहराइयों में है, समुद्र की गहराई में हैं, तो हम बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जिस तरह आपने मत्स्य अवतार लिया, हम सब जानते हैं कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिया राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए और प्रलय के जल में रक्षा की है। राजा को कहा था आज से सातवें दिन प्रलय आएगा, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा और फिर तुम्हारे लिए एक बोट भेजेंगे, तुम उसमें बैठ जाना। और फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और उस बोट को खींचते रहे प्रलय के जल में। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, आपके चरणों में इस मीन को देखकर मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे वो प्रलय के जल में आपने अपने भक्त सत्यव्रत की रक्षा की थी, तो इस समय भी मेरे जीवन में प्रलय आया हुआ है, दुखों का प्रलय आया हुआ है, बंधनों का प्रलय आया हुआ है, अनावश्यक बोझों का प्रलय आया हुआ है, कृपया इस समय भी आप इस मत्स्य का स्मरण करके, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस समय भी आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के चरणों में मीन के चिन्ह को देखें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम भक्ति की गहराइयों में तैरते हुए, डूबते हुए, समुद्र हो सकता है तैरने के लिए हो, लेकिन भक्ति का समुद्र डूबने के लिए। जब तक डूबेंगे नहीं, जीवित नहीं रहेंगे भक्ति में। ये जो साधारण समुद्र है, इसमें डूबने के बाद व्यक्ति मर जाता है, लेकिन भक्ति रस का जो समुद्र है, उसमें डूबने के बाद व्यक्ति सही दृष्टि में जीता है। जीवन तो तब पता चलता है उसे जब भक्ति रस में डूबता है। अभी तो केवल धोखा दे रहा है अपने आप को भी, समाज को भी, और हर एक को, भगवान को भी। अभी तो धोखा दे रहे हैं। असली जीवन होगा जब डूब जाएंगे। तो ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। तो ये मीन का चिन्ह है। और फिर अगला चिन्ह है जौ के दाने का, छोटा सा चिन्ह है, अगर आपको दिख रहा हो आपके स्क्रीन पर, अगर दिखाया जा रहा हो तो जौ, और छोटा सा चिन्ह है ये आख ये। अब हम क्षमा कीजिए, अब हम दाहिने चरण पर आ गए हैं, तो दाहिने चरण के अब चिन्हों का वर्णन शुरू कर रहे हैं। तो आठ चिन्ह जो भगवान के बाएं चरण पर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब दायां चिन्ह, आप उसको दिखा रहे हो इस समय, दाहिना चिन्ह, दाहिना चरण, ओके। तो अभी आपको दाहिना चरण दिखाया जा रहा है, इसमें 11 चिन्ह हैं जिनका वर्णन हम प्रारंभ करेंगे। जौ है, चक्र है, इत्यादि जैसे जैसे आए। तो अब दाहिने चरण के पहला चिन्ह या नौवां चिन्ह है जौ का दाना, बस छोटा सा, इतना सा होता है जौ। तो जौ के दाना क्यों? जौ का दाना इसलिए कि जब हम इस जौ के दाने का स्मरण करें भगवान के चरणों पे, तो भगवान से प्रार्थना करें। ये जौ का दाना क्या सूचित करता है? कि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है उसके जितने भी जीवन थे, हजारों लाखों करोड़ों जीवन जो थे या उन जीवन में जो काम कर्म होने वाले थे, वो सब भगवान के प्रभाव से छोटे होकर एक जौ के दाने के समान हो गए। अर्थात जितने भी लाखों करोड़ों जन्म और लेने थे हमें, भगवान का चरण कमल का आश्रय लेने से सब समाप्त, तो बस इतना सा रह गया। या फिर हमारे कर्म जो ऐसे संचित कर्म थे कि पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों जन्म हमें लेने पड़ते, उस संचित कर्म को भगवान ने इतना सा कर दिया जौ के दाने के लिए, क्योंकि हमने शरण ले ली भगवान के चरण कमल की। ये भगवान की शक्ति, तो इसीलिए जौ का दाना ये दिखलाता है। और हमारे कर्म बहुत हैं। संचित कर्म का अर्थ होता है कि जो हमने कई कई जन्मों से कर्मों को इकट्ठा करके रखा है वही हमारा धन है। अहम मम अभिमान मात्र धन, बद्ध जीवन जब ले जाने मने मन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि क्या धन इकट्ठा किया है हमने, अहम मम अभिमान मात्र धन, बस यही धन है हमारा। तो जो बहुत समय से कर्म किए हैं उसको संचित कर्म कहते हैं। फिर उन कर्मों में से हमें जो इस जन्म में मिल जाता है वो भाग्य कहलाता है। लोग कहते हैं ना कि भाग्य लिखा कर लेकर आए हैं, तो भाग्य क्या है? संचित कर्मों में से इस जन्म के लिए जो कर्म मिले हैं, और अभी बहुत बहुत कर्म पड़े हुए हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म लेने तक के कर्म पड़े हैं, लेकिन अगर भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो वो सब बड़े छोटे से एक दाने के समान हो जाते हैं। ये जो जौ है इसका उपयोग यज्ञ के लिए किया जाता है। आप सब जानते होंगे जौ के दाने का यज्ञ के लिए उपयोग होता है। क्यों होता है यज्ञ के लिए उपयोग? ऐसे कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो जो सबसे पहली फसल उगी वो जौ की थी, पर इसलिए जौ को महत्व दिया जाता है यज्ञ में, पूजा में इत्यादि। वैसे ये जो जौ है ये हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा है। देखिए भगवान ने भी चुन कर रखा है दाना, गेहूं का नहीं रखा, जौ का रखा है, क्योंकि ये जो जौ है ये हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा है, और हृदय रोग इससे बड़ी जल्दी ठीक होता है। कहा जाता है कि ये जब खून में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात एक दृष्टि से हृदय रोग का ये उपाय है। तो इस हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे भी हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है, इस समय बहुत ज़रूरी है, कभी कभी ज़रूरी हो जाती है हार्ट सर्जरी, नहीं तो व्यक्ति मर जाएगा। तो भगवान को कहना चाहिए कि अब तो बस ये जौ का दाना ही मुझे बचा सकता है, वो भी वो जौ का दाना जो आपके चरण कमल में है, वही मेरे को, मेरे इस हृदय को बचा सकता है इस हृदय रोग से मुझे। वैसे भी हम सबको हृदय रोग लगा हुआ है, इस जगत में भी एक हृदय रोग लगता है, तो वो हृदय रोग नहीं, हमारा हृदय रोग होना चाहिए कृष्ण को हृदय देना। अगर हृदय में रोग लगाना ही है तो कृष्ण प्रेम का लगाना चाहिए। तो ऐसे ये जौ है, और जौ का और एक उपयोग होता है। जौ से, जौ को यज्ञ में भी इस्तेमाल किया जाता है जौ के दाने को, और शराब बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों उपयोग है जौ के। अब हमारे ऊपर है, हमारा जीवन इसी तरह है, हम इसे शराब बनाने में लगाएं अर्थात गलत कार्यों में लगाएं, या फिर हम इसे यज्ञ में अर्थात भगवान को समर्पित करने के लिए लगाएं, ये हमारे ऊपर है, इसीलिए जौ का दाना वहां पर है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जब हम इस दाने का स्मरण कर रहे हैं कि हे कृष्ण, ये जो जौ का दाना आपके चरणों में है, मैं वो जौ का दाना बनूं जो यज्ञ में अर्पित हो सके आपको, मेरा जीवन आपको अर्पित हो सके, मेरा अस्तित्व आपको अर्पित हो सके, मेरी इच्छाएं, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा अहंकार, मैं सब आपको अर्पित कर सकूं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भजन में लिखते हैं कि जो कुछ है वो सब आपको अर्पित करता हूं, अर्पिलु तु अपदे नंद किशोर। वो क्या है भजन, क्या है? मानस देहो गेहो जे किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो जो कुछ है, मेरा मन है, मेरा घर है, मेरे संपत्ति है, मेरे शरीर है, मेरा सारा अस्तित्व मैं आपको समर्पित करता हूं। तो ये जौ के दाने का महत्व है। तो इसीलिए श्री कृष्ण के चरणों में ये जौ का दाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।